معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ 8 ہے. آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلائنڈ مشن. اس کی مصنف مظہر کلیم ہے اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. جوانا، یہاں اسلحے کا ایک بڑا اسٹور ہے، اس میں جا کر بم کو چارج کرو اور ڈی چارجر لے آؤ، عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا ایک دروازے کی طرف مڑ گیا. یہ روزانہ آ کر مجھے موت کی دھمکیاں دیتا تھا، شوکائی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رائٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں، یہ یہاں کا انچارج رائٹ ہے، عمران نے جواب دیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک ڈی چارجر تھا جو اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا. اسے اپنے پاس رکھو، ہم نے اسی گٹر کے ذریعے واپس جانا ہے، عمران نے کہا. اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شوکائی سمیت بیرونی گٹر سے باہر آ گئے اور عمران کے کہنے پر جوانا نے گٹر کا ڈھکن واپس رکھ دیا. جوانا، اب تم نے شوکائی کو ساتھ لے کر جانا ہے، عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. اور آپ ماسٹر؟ جوانا نے چونک کر کہا. مس کنگ سلوان کی خیریت پوچھ کر ہی آؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ماسٹر، انہیں کسی ہوٹل میں ٹھہرا دیتے ہیں، واپسی پر ساتھ لے چلیں گے، جوانا نے رک رک کر کہا. وہ شاید عمران کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. میں نے اسلحے خانے میں بم اس لیے نصب کرایا ہے کہ میں اس پورے اڈے کو تباہ کر دوں، اس طرح ملبہ ہٹانے اور لاشیں نکالنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، اور اس دوران شوکائی کو بحفاظت یہاں سے نکال لیا جائے گا، ورنہ کنگ سلوان تک شوکائی کے غائب ہو جانے کی خبر پہنچ گئی تو وہ پورے لوپیک میں قیامت برپا کر دے گا، عمران نے کہا. ٹھیک ہے ماسٹر، آپ کی مرضی، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا. یہاں سے واشنگٹن کے لیے چارٹرڈ فلائٹ مل سکتی ہے، تم شوکائی کو لے کر جب تک واشنگٹن پہنچو گے میں یہاں سے فون کر کے سرداور کو ساری صورتحال بتا دوں گا. واشنگٹن میں پاکیشیا سفارت خانے کے افراد تمہیں پک کر لیں گے اور پھر باقی کام ان کا ہوگا، لیکن تم نے بہرحال شوکائی کی بحفاظت واپسی تک ہر لمحہ چوکن نہ رہنا ہے، عمران نے کہا. ٹھیک ہے ماسٹر، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، میں اپنا کام بخوبی سمجھتا ہوں، عمران جوانا نے کہا. اور عمران بے اختیار مسکرا دیا. بلڈ ہاؤنڈز کے چیف ڈان نے مارشل آرٹ سینٹر کی پارکنگ میں کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا. وہ بے شمار بار یہاں آ چکا تھا کیونکہ یہاں کا مینیجنگ ڈائریکٹر رابرٹ اس کا گہرا دوست تھا اور ان دونوں نے ایک ہی استاد سے مارشل آرٹ سیکھا تھا. لیکن وہ صرف رابرٹ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ رابرٹ کے ذریعے کنگ سلوان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جب کنگ سلوان کو پی ایس پی کی تباہی کی خبر دی تو کنگ نے اسے ہدایت کی تھی کہ پی ایس پی میں موجود شوگرانی نوجوان کی لاش دیکھ کر اسے اطلاع دے، اور جب ملبہ ہٹانے کے باوجود شوگرانی نوجوان کی لاش دستیاب نہ ہوئی تو اس نے کنگ کو رپورٹ دی تھی، اور کنگ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ بلڈ ہاؤنڈز کے ذریعے نہ صرف اس شوگرانی نوجوان کی تلاش کرے بلکہ ان دو افراد کو بھی ٹریس کیا جائے، جن میں ایک مقامی ہے اور ایک حبشی. ان دونوں کی تصویریں بھی ان تک پہنچ گئیں، اور پھر جب اس نے تمام کھوج لگا لیا تو اسے معلوم ہوا کہ شوگرانی نوجوان اور حبشی دونوں چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے واشنگٹن گئے ہیں. اور جب ڈان کو اس کا علم ہوا تو اتنا وقت گزر چکا تھا کہ چارٹرڈ فلائٹ کو واشنگٹن پہنچے ہوئے بھی ایک گھنٹہ گزر چکا تھا، جبکہ دوسرا مقامی آدمی غائب ہو گیا تھا، اس کا کہیں سے کوئی اتا پتا نہیں مل رہا تھا. ڈان نے جب یہ اطلاع دینے کے لیے کنگ سلوان کو فون کیا تو دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا. اس کے بعد اس نے کنگ سلوان کے ہیڈ کوارٹر انچارج تھامس کو فون کیا لیکن وہاں بھی فون اٹینڈ نہیں کیا گیا، تو ڈان بہت پریشان ہو گیا. اور اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے مارشل آرٹ سینٹر پہنچ کر رابرٹ کے ذریعے کنگ سلوان سے رابطہ کرنے کا شور سوچا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کنگ سلوان کا ہیڈ کوارٹر مارشل آرٹ سینٹر کے نیچے موجود ہے اور وہاں کا راستہ بھی رابرٹ براؤن کے آفس سے ہی جاتا ہے، اور رابرٹ سے کنگ سلوان کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ رابرٹ کے آفس میں داخل ہو رہا تھا. رابرٹ کو شاید اس کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے اس کا استقبال دروازے پر آ کر کیا. بلڈ ہاؤنس کے چیف کو اگر بلڈ ملنا بند ہو گیا ہو تو میں انتظام کر دوں، رابرٹ نے ڈان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. ہاں، سنا ہے کہ تمہارے اندر ضرورت سے زیادہ ہے، ڈان نے جواب دیا تو دونوں بے اختیار قہقہ مار کر ہنس پڑے. क्या पियोगे? रॉबर्ट ने पूछा। जो मर्जी आए पिलवा दो, मुझे मालूम है कि पीने पिलाने के मामले में तुम्हारा जोक बहुत अच्छा है, डॉन ने जवाब दिया। तो रॉबर्ट मुस्कुरा दिया। फिर उसने अलमारी खोली और उसमें से एक बोतल निकाली और फिर दो गिलास निकाल कर उसने मेज पर रखे और फिर बोतल का ढक्कन हटाकर उसने दोनों गिलास आधे से ज्यादा भर दिए। ये 150 साल पुरानी शराब है, पी कर देखो लुत्फ आ जाएगा, रॉबर्ट ने कहा। अच्छा, वेरी गुड, डॉन ने कहा और ग्लास उठाकर एक चुस्की ली ही थी तो उसके चेहरे पर तहसीन के तासुरात उभर आए। अरे वाकई ये तो लाजवाब है, डॉन ने कहा तो रॉबर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट मुसर्रत के तासुरात उभर आए। कैसे इधर आना हुआ, और वो भी इस वक्त? पहले तो तुम शाम को ही आते थे, रॉबर्ट ने शराब पीते हुए कहा। किंग सलवान से रब्ता नहीं हो रहा, मैंने बेहद कोशिश की लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं की गई। फिर मैंने थॉमस को कॉल किया लेकिन वहां से भी फोन अटेंड नहीं किया गया, जबकि मैंने इंतहाई जरूरी रिपोर्ट किंग को देनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम किंग से मेरा रابطہ करा दो, डॉन ने कहा। ये कैसे मुमकिन है कि कॉल अटेंड नहीं की जा रही, रॉबर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, डॉन ने कदर नाराज से लहजे में कहा। मैं हैरत का इजहार कर रहा हूँ, तुम्हें झूठा नहीं कह रहा, रॉबर्ट ने इसके लहजे से नाराजगी को महसूस करते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़े हुए नीले रंग के फोन का रिसीवर उठाया। फोन सेट के नीचे लगे हुए एक बटन को प्रेस करके उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन खुद ही प्रेस कर दिया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। जब काफी देर तक घंटी बजती रही और किसी ने रिसीवर नहीं उठाया तो रॉबर्ट के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात उभर आए। उसने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन एक बार फिर प्रेस कर दिया लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला जो पहली बार निकला था। मुसलसल घंटी बजती रही लेकिन किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। तुम दुरुस्त कह रहे हो, मामला में कोई खास गड़बड़ है, रॉबर्ट ने होठ चबाते हुए कहा। क्या गड़बड़ हो सकती है, डॉन ने कहा। हमें हेडक्वार्टर जाना होगा, रॉबर्ट ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोली और एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और दराज बंद करके इसने इस रिमोट कंट्रोल नुमा आले का रुख अंदरूनी दीवार में मौजूद एक अलमारी की तरफ करके एक बटन प्रेस कर दिया तो अलमारी सरर की आवाज के साथ ही दीवार में गायब हो गई और अब वहां एक आदमी के गुजरने का रास्ता मौजूद था। आओ मेरे साथ, रॉबर्ट ने उठते हुए कहा तो डॉन भी उठकर खड़ा हो गया। रॉबर्ट ने पहले अपने ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर अलमारी के खिसकने से पैदा होने वाली खला में दूसरी तरफ मौजूद सीढ़ियां उतरता चला गया। डॉन उसके पीछे था। उसके जिस्म में एक सरसराहट हो रही थी क्योंकि वो पहली बार किंग सलवान के हेडक्वार्टर में दाखिल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे और फिर इस कमरे से दूसरी तरफ जैसे ही वो हॉल नंबर कमरे में पहुंचे और दोनों हैरत से बुत बने खड़े रह गए क्योंकि वहां 6 अफराद की लाशें पड़ी थी। उनके जिस्म गोलियों से छलनी थे, उनमें एक लाश थॉमस की भी थी। ओह, ये सब क्या है, चल लम्हो बात, रॉबर्ट ने चीख कर कहा तो डॉन को भी होश आ गया। हमें किंग का मालूम करना होगा, यहाँ तो मेरे ख्याल में कत्लेआम किया गया है, डॉन ने कहा तो रॉबर्ट तेजी से मुड़ा और फिर एक राहदारी में भागता हुआ आगे बढ़ता चला गया। डॉन भी उसके पीछे था। फिर वो एक बड़े ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचे तो एक बार फिर हैरत की शिद्दत से बुत बनकर रह गए क्योंकि ऑफिस के कालीन पर किंग सलवान की लाश पड़ी थी। उसका सीना भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ओह, ये कैसे मुमकिन है, यहाँ कोई अंदर आ ही नहीं सकता, फिर ये कैसे हुआ, रॉबर्ट ने जैसे चीखते हुए कहा। कोई दूसरा या कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, डॉन ने कहा और उसके साथ ही अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसे ख्याल था कि किंग सलवान की मौत के बाद सांगर माफिया का चीफ वो खुद बन चुका था। रॉबर्ट, अब किंग सलवान की मौत के बाद मैं डॉन चीफ ऑफ ब्लड हाउंड्स सांगर माफिया का चीफ बन चुका हूँ। और सुनो, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें थॉमस की जगह अपना नंबर 2 बना सकता हूँ। बोलो, तैयार हो, डॉन ने दानिश्ता ये कहकर फिक्रा मुकम्मल नहीं किया। ओह वाकई डॉन, तुम अब चीफ हो, मैं तस्लीम करता हूँ और तुम्हारी मेहरबानी के तुम मुझे ये ओहदा दे रहे हो। मैं हलफन कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा, रॉबर्ट ने फौरन जवाब देते हुए कहा तो डॉन के चेहरे पर यकलख मुसर्रत के तासुरात उभर आए। तो ऐसा करो कि फौरन थॉमस के सामान को चेक करो, इसमें यकीनन कोई फाइल होगी जिसमें सागर माफिया के तमाम छोटे बड़े अड्डों और सेक्शनों की तफसील मौजूद होगी। इन सबको फोन पर इत्तला दे दो कि किंग सलमान और थॉमस हलाक हो चुके हैं और अब किंग सलमान की जगह सागर का डॉन चीफ बन चुका है और तुम थॉमस की जगह सागर के नंबर टू हो, डॉन ने तेज तेज लहजे में कहा। हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन पहले ये तो चेक कर लें कि ये सब कुछ किया किसने है और कहाँ से आया, वो कौन था, वरना वो इनकी तरह अचानक हमारे सरों पर भी तो पहुंच सकता है, रॉबर्ट ने कहा और डॉन ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वो रास्ता तलाश कर लिया जहां से कोई अंदर आया था, वहां मौजूद सब अफराद को हलाक करके वापस उसी रास्ते से चला गया और ये रास्ते का गटर था क्योंकि गटर का ढक्कन एक तरफ को हटा हुआ पड़ा था और खुफिया रास्ता जो अंदर से कंक्रीट की दीवार से ब्लॉक था वैसे ही बंद था। ये यकीनन वही पाक एशियाई एजेंट होगा, वो एक आदमी जो इस चौगरानी नौजवान और हबशी के साथ वापस नहीं गया बल्कि यहीं कहीं गायब हो गया था, वही लोग जिन्होंने पीएसपी को तबाह किया और उस चौगरानी को ले उड़े, डॉन ने कहा। तो रॉबर्ट हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। और फिर जब डॉन ने उसे तफसील बताई तो उसकी आंखें फैलती चली गईं। फिर तो ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, रॉबर्ट ने कहा। ये एजेंट लोग वाकई खतरनाक होते हैं। असल में चीफ ने इस चक्कर में पड़कर बड़ी गलती की थी। हमारा काम मनुष्यात की स्मगलिंग है, हुकूमती मसाइल में पड़ना नहीं है। और चीफ ताकत के जोम में एक्रीमियन हुकूमत के कहने पर इस चक्कर में पड़ गया जिसका नतीजा ये निकला है। हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डॉन ने कहा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस बात में सर हिला दिया। ये काम चीफ को किसने दिया था, वापस चीफ के ऑफिस की तरफ आते हुए रॉबर्ट ने कहा। ब्लैक शेडो के चीफ जॉन विक्टर ने, वो सुपर चीफ ग्रेटमैन का दोस्त है, डॉन ने जवाब दिया। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ, रॉबर्ट ने पूछा तो डॉन बेअख्तियार हंस पड़ा। थॉमस मेरा दोस्त था, उसने मुझे ये सारी तफसील बताई थी, डॉन ने कहा। और रॉबर्ट ब्राउन ने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि वो भी उनकी दोस्ती से वाकिफ था। और फिर वो दोनों भी ऑफिस में पहुंचे ही थे कि उनकी फोन की घंटी बजी और डॉन ने तेजी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, डॉन ने बड़े बारोब लहजे में कहा। किंग सलमान से बात कराओ, मैं ब्लैक शेडो का चीफ जॉन विक्टर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया। तो डॉन ने मानी खैज नजरों से रॉबर्ट की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि मैंने दुरुस्त बताया था ना, और रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक शेडो का चीफ जॉन विक्टर अपने ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ था के पास पड़े हुए फोन की घंटी बजी तो जॉन विक्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉन विक्टर ने कहा। शोग्राम से रॉल्स की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो जॉन विक्टर चौंक पड़ा। शोग्राम से कराओ बात, जॉन विक्टर ने चौंक कर कहा। हेलो चीफ, मैं राल्फ बोल रहा हूँ, चंद लम्हों के बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौत दबाना था। क्यों कॉल की है, कोई खास बात, जॉन विक्टर ने कहा। चीफ, शोकाई वापस शोग्रान पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया तो जॉन विक्टर को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, जॉन विक्टर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। कैसे, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है कि तुम उसे वहां पहुंचते ही बराह रास्त देखो, जॉन विक्टर ने बाकायदा जिरह करने वाले अंदाज में बात करते हुए कहा। चीफ, मैं अपने एक जाती काम से एयरपोर्ट पर मौजूद था कि मैंने वहां साइंसदान डॉक्टर चियांग को देखा और मैं उसे एयरपोर्ट पर देखकर यही समझा कि वो मुल्क से फरार हो रहा है, लेकिन जो फ्लाइट जाने वाली थी मैंने उसकी लिस्ट चेक की तो इसमें उसका नाम नहीं था, इसलिए मैं समझ गया वो किसी के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद है। फिर पाकेशिया से आने वाली फ्लाइट जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो इसमें उसमें से शोकाई बाहर आया, उसके साथ दो पाकेशियाई भी मौजूद थे। शोकाई अपने बाप से बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मिला, मैं उनके करीब आ गया। उनके दरमियान जो सरसरी सी गुफ्तगू हुई उससे सिर्फ दो नाम सामने आए हैं, एक अली इमरान और दूसरा सर दावर का। और फिर वो सब कारों में बैठकर चले गए और मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, रॉल्फ ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, कहीं ये डॉज ना हो, किसी को शोकाई का मेकअप में वहां ना पहुंचाया गया हो, जॉन विक्टर ने उलझे हुए लहजे में कहा। नहीं चीफ, जिस गर्मजोशाना अंदाज में दोनों बाप बेटा मिले हैं, ऐसी गर्मजोशी कोई नकली आदमी नहीं दिखा सकता। वो असल शोकाई था। रॉल्फ अपनी बात पर बजिद था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, जॉन विक्टर ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडिट दबाया और फिर उसने फोन सेट के नीचे मौजूद बटन को प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो किंग सलमान से बात करना चाहता था क्योंकि अब सांगर का चीफ किंग सलमान था। दूसरी तरफ काफी देर तक घंटी बजती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। किंग सलमान से बात कराओ, मैं ब्लैक शेडो का चीफ जॉन विक्टर बोल रहा हूँ, जॉन विक्टर ने तेज लहजे में कहा। किंग सलमान को हलाक कर दिया गया है और मैं डॉन, जो पहले सांगर के ब्लड हाउंड सेक्शन का चीफ था, अब सांगर का चीफ हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जॉन विक्टर एक बार फिर उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, किंग सलमान को हलाक कर दिया गया है? क्यों, कैसे और कब, किसने हलाक किया उसको? जॉन विक्टर ने एक बड़ी सरकारी एजेंसी के चीफ होने के बावजूद बौखलाए हुए लहजे में कहा। दरअसल किंग सलमान की हलाकत का सुनकर वो वाकई बौखला गया था। किंग सलमान को उनके ऑफिस में किसी ने पूरे शरार अंदाज में दाखिल होकर हलाक किया है और यहाँ हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम अफराद को भी हलाक कर दिया गया है। अभी इस बात का इल्म हुआ है, अब इस बारे में इंक्वायरी की जाएगी, डॉन ने जवाब दिया। किंग सलमान के पास एक शोगरानी मुखबिर मौजूद था, उसका क्या हुआ, जॉन विक्टर ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। वो भी पुरेसरार तौर पर गायब हो चुका है। इसे सांगर के इंतहाई खुफिया सेंटर PSP में रखा गया था, लेकिन फिर अचानक PSP सेंटर बमों से तबाह हो गया। वहां से जो लाशें मिली हैं, उनमें से किसी शोगरानी की लाश नहीं मिली, और हमने लॉपैक में चेकिंग की तो हमें सिर्फ इतनी इत्तला मिल सकी है कि एक शोगरानी नौजवान एक हबशी के साथ चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वाशिंगटन गया है, और जब हमें पता चला तो उन्हें वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अब हम उन्हें वहां ट्रेस भी नहीं कर सकते। इसके बाद किंग सलमान की हलाकत सामने आई। इसके अलावा इनका एक और सेंटर भी तबाह हो गया है, वहां से उनके खास आदमी रॉडल की लाश मिली है। उससे पहले रॉथ आइलैंड पर सुपर चीफ ब्रेटमैन को हलाक किया गया था और रॉथ आइलैंड पर मौजूद सांगर का मैन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और तमाम बड़े बड़े सरबराह मारे जा चुके हैं। इस तरह सिर्फ एक मुगवी के चक्कर में फंसने की वजह से सांगर माफिया एक लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जो इत्तलात अभी तक मुझे मिली है, उनके मुताबिक ये सारी कार्रवाई पाकेशिया के आदमियों की है। चार आदमियों ने रॉथ आइलैंड तबाह कर दिया, फिर दो वापस चले गए और दो यही लॉपैक में रह गए। फिर रॉडल हलाक हुआ, उसका 3X स्पेशल सेंटर तबाह कर दिया गया। उसके बाद PSP सेंटर, जो हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर था, वो तबाह कर दिया गया और इन दो आदमियों में से एक आदमी शोगरानी नौजवान के साथ वापस चला गया और एक यहाँ रह गया, और इस एक ही ने यकीनन किंग सलमान और उसके हेडक्वार्टर को तबाह किया, दूसरी तरफ से बड़े जोशीले अंदाज में कहा गया। ओह वेरी बैड, मैंने हुकूमत क्रीमिया के आला हुक्काम की मिन्नत करके ग्रेट मैन को ये मामूली सा मिशन दिलाया था ताकि आइंदा भी सांगर माफिया को हुकूमत के बड़े बड़े मिशन मिलते रहे। हुकूमत क्रीमिया सांगर माफिया की मनशियात स्मगलिंग को नजरअंदाज किए रखती थी, लेकिन मुझे मालूम ना था कि सांगर माफिया का नेटवर्क कितना कमजोर है कि दो चार आदमी सारे नेटवर्क को तबाह बर्बाद करके मुगवी को वापस ले जाएंगे, जॉन विक्टर ने चीखते हुए लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। इसका मतलब है कि रॉल्फ की रिपोर्ट दुरुस्त है, असल शोकाई वापस शोगरान पहुंच चुका है। अब फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है, जॉन विक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, और फिर वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके जहन में ख्याल आया कि फौरी तौर पर डॉक्टर चियांग को या उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाए और फार्मूला इससे हासिल कर लिया जाए, लेकिन जाहिर है वो अकेला ये फैसला नहीं कर सकता था, इसके लिए डिफेंस सेक्रेटरी की मंजूरी जरूरी थी। और जॉन विक्टर ये भी जानता था कि डिफेंस सेक्रेटरी को बहरहाल रिपोर्ट देना पड़ेगी, और जैसे ही डिफेंस सेक्रेटरी को इसकी वाज़ह शिकस्त का इल्म होगा, वो गुस्से से पागल हो जाएगा। इसीलिए वो बैठा सोच रहा था कि किस अंदाज में बात की जाए, लेकिन जब कोई बात उसकी समझ में नहीं आई तो उसने डिफेंस सेक्रेटरी को सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला किया। इसने रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे दो नंबर प्रेस किए। यस, दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी सर जोहन से मेरी बात कराओ, जॉन विक्टर ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और जॉन विक्टर ने रिसीवर रख दिया। सर जोहन काफी अर्सा ग्रेट लैंड में क्रीमिया के सफीर रहे हैं, उन्हें एक्रीम में बुलवा कर डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया और वो बेहद गुस्तावर मशहूर थे। मामूली सी बात का भी बतंगड़ बना दिया करते थे, इसलिए जॉन विक्टर इनसे बात करने में खौफ महसूस कर रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि जल्द या बदेर बहरहाल उन्हें बताना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना खुद ही उन्हें बता दिया जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो बैठा यही बातें सोच रहा था कि फोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉन विक्टर ने कहा। सर जौहन से बात करें जनाब, उनकी सेक्रेटरी लाइन पर है। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, मैं ब्लैक शेडो का चीफ जॉन विक्टर बोल रहा हूँ, सर जौहन से बात कराएं। जॉन विक्टर ने कहा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, थोड़ी देर बाद सर जौहन की पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। यस, जॉन विक्टर ने कहा, बात करें, सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुनकर जॉन विक्टर समझ गया कि सेक्रेटरी डिफेंस से रब्ता हो गया है। सर, मैं जॉन विक्टर बोल रहा हूँ, जॉन विक्टर ने मौत दबाना लहजे में कहा। यस, क्यों कॉल की है, दूसरी तरफ से सपाट से लहजे में कहा गया। सर, हमारा शोकरान मिशन नाकाम हो गया है, जॉन विक्टर ने दिल कड़ा करके साफ लफ्जों में कह दिया। क्या क्या नाकाम हो गया, दोबारा कहो, सर जौहन ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उन्हें बात ही समझ में नहीं आई। शोग्रान से लाया जाने वाला मुखबिर शोकाई रिहा होकर वापस शोग्रान पहुंच गया है और सांगर माफिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। इस तरह हमारा ये मिशन नाकाम हो गया है, जॉन विक्टर ने कहा। क्या मतलब, कैसे नाकाम हो गया, किसने किया और अब तुम मुझे बता रहे हो जब सब कुछ खत्म हो गया, इस बार सर जौहन ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। सर, मुझे भी अभी ही इत्तला मिली है, शोग्रान में हमारा एक एजेंट काम करता है रॉल्फ, इस चौकाई को वहां से अगवा करने में सांगर की मदद इस रॉल्फ ने की थी। अभी थोड़ी देर पहले रॉल्फ की कॉल आई है और उसने बताया कि चौकाई वापस शोग्रान पहुंच गया है और उसने अपनी आंखों से उसे देखा है। मैंने उसका एतबार ना किया तो उसने मुझे तफसील बताई कि एयरपोर्ट पर चौकाई का बाप साइंसदान डॉक्टर चियांग मौजूद था। पहले वो समझा कि डॉक्टर चियांग शायद कहीं बाहर जा रहे हैं। इसने बाहर जाने वाली फ्लाइट की लिस्ट चेक की तो डॉक्टर चियांग का नाम लिस्ट में नहीं था। चुनाचा वो समझ गया कि डॉक्टर चियांग किसी को लेने के लिए आया है। फिर पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट से चौकाई उतरा, उसके साथ दो आदमी थे। फिर दोनों बाप बेटा बड़ी गर्मजोशी से मिले। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी रात में सुनी। उसमें दो नाम सामने आए हैं, एक अली इमरान और दूसरा सर दावर का, और फिर वो वापस चले गए। तो रॉल्फ ने मुझे कॉल करके ये सारी तफसील बताई, जॉन विक्टर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ये सब कैसे हुआ, सर जौहन ने तेज लहजे में कहा। सर, मैंने रॉल्फ की इत्तला के बाद जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक चार अफराद रॉ थाईलैंड पहुंचे हैं, जहां सांगर का हेडक्वार्टर था और जहां इसका सुपर चीफ ब्रेटमैन रहता था और जिसे हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया था। लेकिन ये जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और ब्रेटमैन भी हलाक हो गया, लेकिन मुगवी शोकाई लोपैक में था इसलिए वो बच गया। फिर लोपैक में सांगर का हेड किंग सिल्वान था। शोकाई एक इंतहाई खुफिया सेंटर पीएससी में था। उसके साथ एक और हेडक्वार्टर था जिसे 3X स्पेशल प्वाइंट बनाया गया था। यहाँ एक ताकतवर तरीन आदमी रॉडल रहता था। चुनाचा ब्रेटमैन की हलाकत के बाद किंग सलवान चीफ बन गया और उसने रॉडल को रॉथ आइलैंड तबाह करने वालों को ट्रेस करने का मिशन सौंपा। लेकिन इन चारों में से दो अफराद वापस चले गए और दो लोपैक में ही रह गए। फिर रॉडल हलाक हो गया और उसका सेंटर बमों से तबाह कर दिया गया। फिर यही हशर पीएसपी सेंटर का हुआ और शोकाई को साफ निकाल लिया गया। शोकाई एक आदमी के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से वॉशिंगटन और वहां से पाकिस्तान पहुंच गया, जबकि किंग सलवान का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया और किंग सलवान और उसके तमाम साथियों को हलाक कर दिया गया। और ये काम एक आदमी का था और यकीनन ये आदमी अली इमरान था, जिसका नाम रॉल्फ की रिपोर्ट में मौजूद है। इस अली इमरान के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। इस तरह ये मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अब मेरा ख्याल है कि इस डॉक्टर चियांग के बेटे की बजाय उसकी बेटी को अगवा किया जाए, क्योंकि बहरहाल हमने वो फार्मूला तो उससे हासिल करना ही है, जॉन विक्टर ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। लेकिन ये काम तो शोग्रानी एजेंटों का था, पाकिस्तानियों का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है, सर जौहन ने कहा। हो सकता है जनाब, کہ شوگرانی حکومت نے اس کے لیے خصوصی طور پر پاکیشہ حکومت سے درخواست کی ہو، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جان وکٹر نے جواب دیا، تمہاری بات درست لگتی ہے، تم اس عمران کو جانتے ہو؟ سر جوہر نے کہا۔ یس سر، میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، جان وکٹر نے جواب دیا۔ کیا تمہارا اس سے براہ راست کبھی ٹکراؤ ہوا ہے؟ سر جوہر نے پوچھا۔ نو سر، براہ راست کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، جان وکٹر نے کہا۔ تمہیں پہلی بار کب پتا چلا کہ عمران اس سارے کھیل کے پیچھے ہے؟ سر جوہر نے پوچھا۔ ابھی ابھی سر، جب رالف نے اپنی رپورٹ میں علی عمران کا نام لیا ہے، جان وکٹر نے اس بار جان بوجھ کر پہلی باتیں چھپاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اسے گریٹ مین کی ہلاکت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی شوکائی کو رہائی کے لیے لو پیٹ پہنچ چکے تھے، لیکن اس وقت اسے 100% یقین تھا کہ وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اب یہ بات اگر وہ سر جوہن کو بتا دیتا تو سر جوہن یقیناً اسے گولی مار دیتے، اس لیے وہ ساری بات صاف صاف چھپا گیا۔ پھر تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں انتہائی سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال ہماری یہ بنیادی غلطی تھی کہ ہم نے ایک مجرم گروپ پر اس قدر انحصار کیا، جبکہ پاکیشہ ایجنٹوں کے سامنے بڑی بڑی تربیت یافتہ اور شہرت یافتہ ایجنسیاں بھی ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ البتہ اب ہم نے بہرحال یہ فارمولہ حاصل کرنا ہے ہر صورت میں، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ شوگران کے پاس خلا میں موجود خلائی سیاروں کو تباہ کرنے کا میزائل موجود ہو، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اس ڈاکٹر چیانگ کو ہلاک کر دیا جائے اور اس کی لیبورٹری سے فارمولہ حاصل کر کے اس لیبورٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، سر جوہن نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم یہ کام آسانی سے کر لیں گے، جان وکٹر نے کہا۔ تم نے پہلے جو کام کیا ہے وہی کافی ہے، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ کام ریڈ ایجنسی کرے گی، اس کا نیٹ ورک شوگران میں بھی ہے، تم اس کیس کو کلوز کر دو۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جان وکٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گو آئندہ کا مشن اسے نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی تھی اور اس کی ایجنسی بھی بچ گئی تھی، اس بات پر اسے بے حد اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حزب روایت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا سے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری عدم موجودگی میں کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، امن ہی رہا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میری عدم موجودگی کی وجہ سے امن رہا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی عدم موجودگی میں سکوت رہتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ مطلب ہے کہ میرے جیسی اعلیٰ گفتگو کوئی نہیں کرتا؟ اس کمنٹ کا بے حد شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شوکائی واپس شوگران پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ شوکائی واپس پہنچ گیا ہے؟ عمران نے چونک کر اور قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جوانا نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ شوکائی کو سرداور کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اس پر میں نے اسے سرداور کی رہائش گاہ کی تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی سرداور کو بھی فون کر کے کہہ دیا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں کیس کی تفصیلی رپورٹ نہیں ملی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رپورٹ کون دیتا؟ جولیا تو ساتھ ہی نہیں گئی تھی، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم جوانا سے رپورٹ لے سکتے تھے، اور ہاں ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جوانا سے میں کیا رپورٹ لیتا، مجھے تو آپ کا انتظار تھا اور ٹائیگر اب بالکل ٹھیک ہے، کل ہی اسے اسپتال سے رخصت ملی ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ ہمارے لیے بلائنڈ مشن ثابت ہوا ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہم یقیناً مشن کے معاملے میں مکمل طور پر بلائنڈ ہو گئے تھے۔ مجھے اماں بی کا قول یاد آیا کہ جب انسان اپنی بھرپور کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بند راستے کھول دینے پر قادر ہے اور وہی ہے جو بلائنڈ کو بینا عطا کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے اماں بی کے اس قول پر عمل کیا اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور ہماری آنکھوں میں روشنی آ گئی اور بلائنڈ مشن روشن مشن بن گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، پلیز تفصیل تو بتائیں، بلیک زیرو نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے شروع سے آخر تک خاص خاص واقعات کی تفصیل بتا دی۔ اوہ واقعی یہ بلائنڈ مشن تھا، आपकी बात दुरुस्त है। अगर वो ब्रॉक्स इत्तफाक से आपको रॉडल समझकर कार के हैंडल में पर्चा ना फंसाता और आपकी इससे मुलाकात ना होती तो वाकई आपके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम हो गया है। अब तुमने तफसील सुन ली है, अब जल्दी से एक बड़ी मालियत का चेक दो ताकि मेरी थकावट भी दूर हो सके, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चेक? ये आप क्या कह रहे हैं? सीक्रेट सर्विस का इस मिशन से क्या ताल्लुक? ये तो आपका जाती मिशन था, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सीक्रेट सर्विस का मिशन नहीं था तो फिर तुमने तफसीली रिपोर्ट क्यों ली? चलो, बड़ी मालियत का नहीं तो छोटी मालियत का ही दे दो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। इसका चेक आप सर दावर से ले सकते हैं, मुझसे नहीं। अलबत्ता इस तफसील के बदले में आपको एक चाय का कप पिलवा सकता हूँ, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, वेरी गुड, सर दावर से चेक वसूल किया जा सकता है, लेकिन एक दरख्वास्त है कि तुम उन्हें वो मालियत खुद बता देना जिस मालियत का चेक तुम मुझे देते हो, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तो आपका क्या इरादा है कि सर दावर को जो ऊपर से फंड मिलता है उस समय 10-12 सालों की इकट्ठी तनख्वाहें आप उनसे वसूल कर लें, ब्लैक जीरो ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान ब्लैक जीरो की बात का जवाब देता फोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने रिसीवर उठाया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ साहब, यहाँ है, दूसरी तरफ से पूछा गया। क्या बात है सुलेमान, क्यों कॉल की है, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान बगैर किसी इमरजेंसी के यहाँ फोन नहीं करता। साहब, सर दावर का फोन आया है, वो आपसे फौरी मुलाकात चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा है कि मैं आपको तलाश करने की कोशिश करता हूँ, जिस पर उन्होंने ताकीद की कि मैं आपको हर सूरत में तलाश करके उनसे बात कराऊं, इसलिए मैंने यहाँ फोन किया है, सुलेमान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं बात करता हूँ उनसे, इमरान ने कहा और उसका दिल दबा दिया। और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि सरदावर बगैर किसी खास वजह के इस अंदाज में बात नहीं करते। ब्लैक जीरो भी ये बात महसूस करके खामोश था। उसकी फराक पेशानी पर भी तश्वीश की लकीरें उभर आई थी। दावर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSC DSC ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस मोड में बात करते हुए कहा। वो शायद सरदावर पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था। इमरान बेटे, गजब हो गया, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि शोगरान में डॉक्टर चियांग को हलाक कर दिया गया है और उनकी लेबोरेटरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई दी। ओह वेरी बैड, इस फार्मूले का क्या हुआ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। वो तो महफूज है, जिस रोज शोकाई को उन तक पहुंचाया गया था इस रोज मेरी उनसे तफसीली बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो इसी रोज फार्मूला मुकम्मल करके हुकूमत शोकरान के हवाले कर चुका है और उन्होंने शोकाई की जिंदा सलामत ये बाजियाबी पर मेरा और तुम्हारा दोनों का बेहद शुक्रिया अदा किया, सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि एक्रीमिया ने यह कार्रवाई इंतकामी तौर पर की है। बहरहाल फार्मूला तो बच गया है, यही बात इस सारे मामले में काबिले इत्मीनान है। और अब इस फार्मूले की हिफाजत हुकूमत शोगरान की ड्यूटी है। बहरहाल मुझे डॉक्टर चियांग की मौत का बेहद अफसोस है, इमरान ने कहा। मुझे इसकी इस तरह अचानक मौत से बेहद शॉक लगा है, वो मेरे गहरे दोस्त थे और इंतहाई काबिल साइंसदान भी। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, सरदावर ने कहा। एक्रीमियन एजेंट इस फार्मूले के पीछे लाजमन काम करेंगे, आप हुकूमत शोगरान से कह दें कि वो इस फार्मूले की हिफाजत करें, इमरान ने कहा। वो मैंने पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हारा भी मशकूर हूँ इमरान कि तुमने सिर्फ मेरी बात की इज्जत रखते हुए इतना बड़ा मिशन मुकम्मल किया है, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जजा देगा, अल्लाह हाफिज, सरदावर ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। लो, मांग लो बड़ी मालियत का चेक, सरदावर का ख्याल था कि डॉक्टर चांग के कत्ल का बदला लेने में फिर दौड़ पड़ूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सरदावर का लहजा बता रहा था कि उन्हें हकीकतन डॉक्टर चियांग की मौत पर बेहद शौक लगा है, ब्लैक जीरो ने कहा। अब बोलो, अब मैं आगा सुलेमान पाशा को क्या जवाब दूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अम्मा बी के कॉल पर दोबारा अमल करें, अल्लाह ताला चाहे तो आपको खजानों का मालिक बना दे, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। नॉवेल यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। आपके समाप्त करने का बेहद शुक्रिया।